ओम शांति। तो जैसे पहले दिन ही बताया था, ब्राह्मणों के प्रोग्राम पल पल परिवर्तित होते हैं, तो इसी का परिणाम है कि इस समय हमारे बीच में है आदरणीय राजयोगिनी गोपी बहन जी। हम एक हाथ हिलाकर स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आपका लौकिक और अलौकिक दोनों ही जन्म अफ्रीका की धरनी पर हुए और फिर दोनों ही रीति से आप लंदन में गए और वहीं स्थायी रूप से बस गए। तो पिछले 40 वर्षों से आप ईश्वरीय ज्ञान मार्ग पर चल रहे हैं और 30 से भी अधिक वर्षों से आप समर्पित जीवन जी रहे हैं और 25 से भी अधिक वर्षों से यूथ के प्रोग्राम के साथ एसोसिएटेड हैं। आप इंटरनेशनल स्पीकर हैं, टीचर हैं स्पिरिचुअल, और पूरे विश्व भर में आप ट्रैवल करते हैं स्पिरिचुअल वैल्यूज को हर फील्ड में कैसे हम इनकॉर्पोरेट करें, इसके लिए विभिन्न संस्थाओं में जाकर, जैसे कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म्स, मिनिस्ट्रीज और हमारे सामाजिक संगठन, व्यवसायों के संगठन, इन सब जगहों पर आपको जब निमंत्रण मिलते हैं, स्पिरिचुअलिटी का रोल जीवन में कितना अहम है इस पर आप उन्हें गाइड करते हैं। लीडरशिप के लिए भी इनर वैल्यूज की कितनी नीड है, कितना इम्पोर्टेंस है, ये सब आप सेमिनार्स करवाते हैं। आज हमारे बीच में है बहुत सुंदर विषय के साथ, सबसे ऊंची मंजिल धरत परिये धर्म न छोड़िए। सुनते हैं दीदी से, आदरणीय दीदी जी।
ओम शांति। कितना सुंदर विषय है, धरत परिये धर्म न छूटे। इस ज्ञान मार्ग में क्यों आए हैं हम, क्यों आए हैं, कभी सोचा है क्या? भावना में चलते 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 ये भी अच्छा लगा, ऐसा नहीं? जैसे रास्ते में चलते बहुत सारे शॉप्स मिलते हैं, इसमें अच्छी अच्छा माल मिलता है, इसमें चलो थोड़ी देर बैठे। लेकिन क्यों आए हैं? जब तक अंदर वो चॉइस या डिसीजन नहीं लेते हैं, तब तक आपकी गाड़ी चलेंगी नहीं। To change ourselves, और क्या रियलाइज हुआ जो आपके अंदर से ये संकल्प उठा कि मुझे परिवर्तन होना ही है? ये ऐसे तो नहीं उठेगा संकल्प, हाँ, फॉर बेटर लिविंग। अच्छा, तो किसने बोला अंदर से कि मुझे चेंज होना है? अपनी पवित्रता ने, एक पवित्रता की मूर्ति बैठी है अंदर, उस मूर्ति ने ईश्वर को पहचाना। ईश्वर एवर प्योर ट्रुथ है, परख लिया ना, परख लिया तब अंदर से कि हाँ यही मुझे बनाने वाला है, और अंदर से आवाज निकला, हाँ मुझे इन जैसा बनना है, परिवर्तन होना है। अब ये भावना शुरू से उत्पन्न होती है लेकिन सदा के लिए रहती है? अभी थोड़ा ऑनेस्टी से चार्ट चेक करो, क्योंकि हम बहुत समय से भक्ति की है तो भक्ति मार्ग में क्या होता है, तो बस भावना में आकर के कुछ कर लो, कुछ समझ में आए या ना आए लेकिन कर लो, ये ज्ञान मार्ग में नहीं चलेगा। ज्ञान मार्ग में एक एक आपका कर्म अंदर की चॉइस होनी चाहिए, तब जाकर के हिम्मत का पगला से आगे बढ़ सकते, तब जाकर के भगवान की मदद मिलती है, क्योंकि ये मेरी चॉइस है। प्यूरिटी इज माय चॉइस, ट्रूथ इज माय चॉइस। जब तक अंदर से आत्मा ने ऐसा चॉइस नहीं लिया है, निर्णय नहीं किया है, तो कैसे धर्म को, धर्म की सत्ता भी नहीं आ सकती है हाथ में, क्योंकि धर्म की सत्ता का आधार ही है धारणा, और धारणा का आधार है हमारा पर्सनल चॉइस और नियम, श्रेष्ठ नियम। और हमने उस फील्ड में भी खुद के नियम नहीं बनाए हैं, तो आपकी किस प्रकार, कौन से आधार से चल रहे हो? पुराने स्वभाव से, पुराने रजोप्रधान संस्कार से अपने आप को चला रहे हो? बस जैसी गाड़ी चलेंगी वैसे चलो। प्यूरिटी की धारणा बहुत महीन है। चलो एक तरफ से हम फील्ड पे हैं, सेवा की फील्ड पे, जब शुरू शुरू में योग बहुत अच्छा लगता है, ज्ञान अच्छा लगता है, बहुत ऊंची भावनाएं प्रकट होती है अंदर से, तो फील्ड पे जब हम आते हैं ऊंची श्रेष्ठ भावनाएं लेकर के आते हैं, लेकिन जल्दी से जल्दी वो भावना करप्ट हो जाती है। मेरा सेंटर, मेरी सेवा, मेरा ये, मेरा वो, मैं कर रही हूं, मुझे क्यों नहीं चांस मिल रहा है, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, मैं इतना कर रही हूं कोई देखता नहीं है, फिर क्या होता है, दिल हट जाता है सेवा करने से। जब तक आपको कोई मान शान ना देवे तब तक मैं इतना खुले दिल से सेवा नहीं करूंगी, ये करप्शन है, भावना की करप्शन है ये, तो ठंडे हो जाते हैं और फिर सब कुछ ना अच्छा लगता है। चलो ज्ञान भी अच्छा नहीं लगता है, चलो हम सुनते हैं, ड्यूटी है करते, लेकिन रस ओम शांति हो गया। है ना, क्योंकि आपकी प्योर भावना में करप्शन आ गई, मैं और मेरा की करप्शन आ गई। बात सही है, ये सबके साथ होता है, ये कोई nobody is free from this। लेकिन प्यूरिटी की पहली निशानी है ऑनेस्टी। धारणा में प्यूरिटी लानी है तो सच्चे दिल पर साहेब राजी, मींस ऑनेस्टी माना हर बात में मैं खुद जो हूं, जैसी हूं वैसी बात बताऊं, स्पष्टीकरण हर बात में, समझ में आई बात, मैं कुछ गोल गोल कहानी नहीं बना दूं, बस आपको पता नहीं बहन जी ऐसे हुआ वैसे हुआ वो हुआ वो हुआ, बल कारण कितने भी हजार लाखों कारण होंगे, लेकिन बात क्या हुई, जो है जैसी बात वो बताओ पहले। कई लोग हमारे पास आते हैं, बहन जी हमारे पास ये प्रॉब्लम है, ये है, ये स्टोरी बन, स्टोरी लेके आते, कुछ ना कुछ कहानी लेके आते हैं, इसके साथ ये व्यवहार हुआ वो हुआ, फिर इसने ये बोला वो किया। मैं दो मिनट के अंदर चुप करवाती हूँ, मैं फिर बोलती हूँ, अच्छा इसमें से आप कैसे निकलेंगे, आपकी बुद्धि इस कहानी से कब निकलेंगी? जब तक कहानी घूमती रहेगी ना दिमाग में, तब तक ज्ञान बैठेगा नहीं, ज्ञान कुछ काम नहीं करेगा। तो कहानी से निकलने से मैंने इनको एक प्रश्न पूछा कि आप मुझे बताओ, इस सारी सिचुएशन में आपने कब बाबा का हाथ छोड़ा और अपनी धारणा को छोड़ा? आप मुझे वो घड़ी पहले बताओ, फिर हम और बातें में जाएंगे। अनिष्ट तो ये है ना कि इस कहानी में मैं फंस गई। क्यों? क्योंकि मैंने श्रीमद का हाथ छोड़ा कई जगह पे, बाबा का हाथ छोड़ा और मैंने खुद अपनी धारणा का कॉम्प्रोमाइज किया। यहां से पहले शुरू करो। ये जो दिमाग में इतनी सारी कहानियां लेके घूम रहे हो, मेरा ये सिचुएशन है, वो सिचुएशन, वो सब धोखा देने वाली कहानियां हैं। जब बाबा के पास आए हैं, दिस इज टाइम टू फिनिश स्टोरीज। ये तो भक्ति मार्ग में बहुत कहानियां थी, अभी आखिर कहां तक आप कहानियां बनते रहेंगे? बस घर में कुछ कहानी थी, सेंटर में आओ वहां पे भी और कुछ कहानी है, बाहर जाओ और भी कुछ कहानी है, कहां तक आखिर? तो सेल्फ रियलाइजेशन कब होगा? समझ में आई बात? इफ यू वॉन्ट टू मेक योर लाइफ, तो अंदर से मेरी धारणा क्या है? धारणा एक प्रकार का अंदर का स्ट्रक्चर है, एक मेरा इंटरनल वर्किंग सिस्टम है। कुछ भी हो जाए, ये मैं अपनी सिस्टम अनुसार चलूंगी। चलो आपने सारे दिन की दिनचर्या बना दी, ठीक है, अब फिर उस दिनचर्या के प्रमाण चलेंगे ना, और खाना का परहेज भी करना है, वो भी कैलकुलेट करके उस हिसाब से चलेंगे ना। तो सेम थिंग, धारणा इज स्पिरिचुअल। मेरी अंदर की सिस्टम क्या है जो मैं श्रेष्ठ वृत्ति बना करके रखूं, जो मैं श्रेष्ठ दृष्टि बना करके रखूं, जो मेरे मुख से कल्याणकारी बोल निकले? मैंने कौन सा सिस्टम सेट किया है इन बातों के लिए? स्थूल बातों के लिए तो बहुत अच्छे सिस्टम सेट कर दिए हैं, लेकिन अंदर की दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, बोल के लिए कौन सा सिस्टम सेट किया है? क्योंकि आप बिना सिस्टम से चलेंगे ना, माया नचाएंगी, इच्छाएं नचाएंगी, अभिमान धोखा देगा, और आप अपने स्वभाव के आधार से चलो चलता है ना, चलो चल ले, जो इजी है बात वो आप कर लेंगे, जो राइट है वो छोड़ देंगे। समझ में आई बात? तब जाकर के धारणा में कमी पड़ती है, फिर कमजोर बन जाते हैं। कमी पड़ने का यही कारण है कि हमने जो चीज इजी थी वो ही कर ली, और सभी कर ले ना तो और क्या बड़ी बात है, हम भी कर लेते हैं ना, लेकिन जो राइट बात है वो थोड़ी मेहनत लगती है, वो छोड़ दी। और ये बड़ी बड़ी बातों में नहीं होते, सबसे छोटी बातों में होती है। आपको पता है खाने के समय बाबा ने क्या श्रीमत दी है? कौन सी श्रीमत दी है बाबा ने? बाबा की याद में खाओ ना। अभी उस समय खाना आता है आपके सामने, दृष्टि भी देते हो, फिर गपशप शुरू, करेक्ट? तो उसी समय आपने क्या किया? आपको पता है अंदर से कि ये मुझे श्रीमत मिली है, मेरी कल्याण के लिए ही मिली है, ताकि मैं अपनी मन बुद्धि को शुद्ध रखूं। और उसी समय भोजन के समय जब चित्त साफ रहता है ना, स्थिर रहता है, भटकता नहीं है, किसी जगह में फंसी नहीं हुई है, तब जाकर के भोजन का रस बैठता है। डिजीज क्यों शुरू होता है? क्योंकि भोजन के समय कुछ कर रहे हो, चित कहीं और जगह पे फंसी हुई है, किसी और बात में फंसी हुई है, ना उसका स्वाद मिल रहा है, ना अटेंशन से ध्यान से भोजन खा रहे हैं, और उसी समय वो जो अंदर आत्मा में स्प्लिट हो जाती है ना, जो चित किसी और जगह पे फंसी हुई है और मैं कुछ और कर्म कर रही हूं, इस स्प्लिट में ही आपकी इनसिक्योरिटी पैदा होती है, आपकी अवस्था में हलचल आती है। थोड़ी गहरी बात है, समझ में आ रही है बात? अब देखो, आप भोजन के समय पे बैठे हो और आपको पता है अंदर से बाबा कह रहे हैं शांति से, बाबा की याद में प्यार से भोजन खाओ। जब भी कुछ प्यार से ऐसे बाबा की याद में करते तो कितने सुकून मिलता है, जैसे वो काम किया ही नहीं है ऐसे लगता है, जैसे कुछ खाया ही नहीं है ऐसे लगता है। लेकिन भोजन के समय किसी के साथ गपशप करो, किसी की बातों में आ जाओ, तो चित्त में क्या होता है? चित्त उस समय स्प्लिट हो जाती है। मन मना भाव की अवस्था में कर्म नहीं कर रहे हैं, किसी की और बातों का प्रभाव चित्त पे लग गया, वो अंदर स्प्लिट कर लेती है, वो ही इनसिक्योरिटी पैदा करती है। अभी आपका हर दिनचर्या का कर्म देखो, कितने कर्म ऐसे होते हैं जिसमें चित्त बाबा के पास नहीं लगी पड़ी है, किसी और बात में कर्म ये कर रहे हो, चित्त दूसरे जगह पे भटक रही है। इसीलिए इतना इनसिक्योरिटी महसूस करते हैं लोग। तो ये सिंपल है कि जो भी कर्म करना है उसके लिए श्रीमत मिली है। क्या श्रीमत मिली है? ये इस श्रीमत के आधार से सिस्टम बना लो, हो गया काम। दादी को तो बहुत देखा है, देखो दादी के पास कितने सारे लोग आते थे, दादी एक्सक्यूज बना करके, चलो भोजन के समय कुछ बोल सकती थी, इतनी सेवा है, लेकिन नो वे, एक बारी दादी भोजन पे बैठी, नो डिस्टर्बेंस। भोजन के बाद भल चर्चा करो, लेकिन भोजन लेते समय बहुत ध्यान रखना चाहिए। और मैं भोजन पे क्यों एम्फसाइज करती हूं? क्योंकि बीमारियां यहां से रूट है इसकी। आज भी बाबा ने बताया, जो वैष्णव है उनका भोजन कैसे होगा? वो कभी अशुद्ध भोजन स्वीकार नहीं करेंगे। तो प्यूरिटी एक तरफ ऑनेस्टी के साथ कनेक्शन है, हर बात में बाबा के साथ ऑनेस्ट रहना है। जो बाबा ने बताया उस डायरेक्शन प्रमाण चलती हूं तो मैं बाबा के साथ ऑनेस्ट हूं, सिंपल। तभी विवेक नहीं खाएंगा ना। आप रात को जब चेकिंग करेंगे, नहीं बाबा इतना नहीं याद किया है, बस मैंने छोड़ दिया बीच में, शॉपिंग करना था, थोड़ा किसके साथ थोड़ा बातचीत करना था, तो मैंने छोड़ दिया आपको साइड में। वो क्या होता है, एक दिन पास होता है आप खुद को फॉरगिव कर सकेंगे, लेकिन हर रोज हो जाएगा ना, दिल भारी हो जाता है। समझ में आई बात? अंदर से निराशा पैदा होती है और फिर आपको कोई चाहिए धक्का देने वाला इसके पीछे भागो, इसके पीछे भागो, इसको गुरु बना दो, इसको पीछे बस इस क्लास सुनते रहो। और जैसे कुछ होता परिवर्तन शक्ति, तो ओम शांति। धारणा में रहना माना क्या? प्यूरिटी की धारणा। हमारी एक सिस्टम है 4 से 8 के बीच में, ओम शांति, नो बिजनेस, ये बाबा के लिए है। मोबाइल सेवा के लिए हम हाथ मिलेंगे, बाकी ऐसे इधर उधर घूमेंगे नहीं उसके साथ, सारा टाइम चेक करते रहो। आपको पता है ना, इतने सारे साइंस के अभी रिसेंट रिसर्च हुए हैं मोबाइल फोन एडिक्शन के ऊपर, क्योंकि इतने सारे वो एप्स बनाते हैं, सॉफ्टवेयर डालते हैं, जो आप खेलते खेलते देखते देखते फेसबुक देख के ट्विटर देख के ब्रेन में कौन सा हार्मोन डेवलप होता है? डोपामीन। डोपामीन इज एडिक्शन हार्मोन। जो गैम्बलिंग एडिक्ट होते हैं, जो दारू पीते हैं, ऐसी हालत हो गई है सभी के पास मोबाइल फोन। हम दादी के पास बैठते थे ना, हमको कहते फेंको इसको, अवस्था इस कारण से बिगड़ रही है। अभी आप देखो बाबा के कमरे में बैठेंगे, घुंघरी डालेंगे कान में। मैंने बोला ये क्या, कहां से नया सिस्टम शुरू हुआ है? ये बस घुंघरे द्वारा बस सॉन्ग बजाओ फिर उसके द्वारा योग लगेगा, तो आपकी बुद्धि का क्या मतलब? बुद्धि योग कहां गई? यू अंडरस्टैंड? ये सिंपल मैं क्यों ये बता रही हूं, क्योंकि हमारी श्रेष्ठ धारणा ऐसे चीप हो गई है। मैं साधारण भी नहीं कहूंगी, चीप हो गई है। हमारा लास्ट वार्तालाप दादी के साथ हुआ था December 2019 में, और दादी जी बेंगलोर जाने वाले थे जनवरी में। तो उस समय हमने दादी को पूछा, दादी आप क्या देख रहे हो अभी? तो दादी जी ने ये जवाब दिया कि जब हमारे टाइम में, साकार बाबा के टाइम पे, हमको ये फीलिंग आती थी कि हम कुछ खास है, बाबा हमको इस दृष्टि से देखता था, हमको भी अंदर से अपने लिए नशा चढ़ता था कि हम कुछ खास है। आज अभी देखेंगे विस्तार में क्या हो गया है, क्या हो गया विस्तार में? ये सब साधारण बन गए हैं। मैं क्या हूं, बस सेवा के पीछे दौड़ो, स्टेज के पीछे दौड़ो, मानसान के पीछे दौड़ो, बस यही जैसे एक छोटा लकड़ी लेकर के चलते रहो। साधारणता बहुत आ गई है, खुद को श्रेष्ठ नहीं समझते हैं। मैं एक श्रेष्ठ विशेष ब्राह्मण आत्मा हूं, क्यों नहीं? क्योंकि पवित्रता की वैल्यू नहीं है, पवित्रता की प्रतिज्ञा नहीं की है। यूथ वाले को हम संभालते हैं, ठीक है, बहुत सालों से, और मैंने देखा कई ऐसी आत्माएं हैं जो सेकंड बॉर्न ब्राह्मिण्स भी है, पूर्व जन्म भी यज्ञ में थी, वापस आती है यज्ञ में, लेकिन उनकी जो कैरेक्टर नेचर उनके पूर्व जन्म के कर्मों से बनी हुई है, तो अच्छे स्वभाव वाले होते हैं, लेकिन टेस्ट पेपर विघ्न जरूर आएंगे, क्योंकि दोबारा इस जन्म में पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी पड़ती है। ऐसे थोड़ी आप पूर्व जन्म का कर्म के आधार से आप जिएंगे, वो तो एक स्टॉक जमा किया है, उस स्टॉक से आप खा रहे हो, लेकिन जब तक आपने प्रतिज्ञा दोबारा नहीं किया कि मुझे यही बनना है कुछ भी हो जाए, तब तक आप जमा का खाता भी नहीं बढ़ाएंगे। तो हर बात में यू नीड टू मेक अ चॉइस। Purity is a choice. और मैंने देखा काफी सेवा के फील्ड में क्या होता है, वैरायटी संस्कार स्वभाव आ जाता है, ठीक है, वैरायटी बहुत होती है सेवा में। चलो मुरली में बैठते तो मुरली एक होती है, सभी के लिए मुरली एक है, लेकिन सेवा के फील्ड में सेवा एक नहीं है, सेवा बहुत वैरायटी प्रकार की है। हर एक की अपनी अपनी विशेषता है, हर एक की अपनी अपनी स्टाइल है, नहीं? इसमें हम बहुत धोखा खाते हैं, क्योंकि वैरायटी होने के कारण क्या शुरू हो जाता है? क्या करे क्या ना करे, दुविधा शुरू हो जाती है, और क्या? हाँ, ऐसे लगता है कि मैं ये करूं यो करूं, पुलिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस, और क्या होता है? कंपटीशन, मैं इससे भी बेहतर करूं, माना अभिमान चढ़ता है थोड़ा सूक्ष्म, कंपैरिजन होता है, बस मुझे मैं ऐसा बनूं, और क्या होता है? हाँ, मैं ये सेवा करूंगी तो मुझे मान शान मिलेगा, प्लेटफॉर्म माना। माया बहुत आती है इस फील्ड में, ये बात समझ लो, करेक्ट। उसी समय ये सभी बातों का फाउंडेशन एक ही चीज है, परदर्शन और परचिंतन। जैसे परदर्शन शुरू हुआ, परचिंतन शुरू हुआ, जैसे परचिंतन शुरू हुआ, आपकी सारी बातें आ गई इसमें। क्वेश्चन मार्क उठेगा, मनशान की बात उठेगी, मैं करूं ना करूं, इससे बेहतर और करूं, मुझे बहुत बड़ा बनना है, ऐसे सब कुछ रूट है परदर्शन परचिंतन। अभी सेवा के फील्ड में रह करके प्यूरिटी की धारणा क्या है? ऐसी आत्मा, आज बाबा ने प्रश्न उत्तर जब किया तो क्या किया था? फास्ट पुरुषार्थ की निशानी क्या है? माना स्वदर्शन, खुद को देखेगा हर बात में, हर बात में। जैसे हम कहते हैं ना, स्व का दर्शन माना पूरा साइकिल, पूरा चक्कर घूम के वापस अपने पर लेके आएंगे। एग्जाम्पल, सेवा के फील्ड में मैंने किसी की नुक्स देख ली, किसी की कमजोरी देख ली, ठीक है। उस समय पूरा साइकिल स्वदर्शन का कंप्लीट करे तो मैं अपने आप को क्या बोलती हूं? अरे गोपी, ये कौन देख रहा है? ये कहां से ये दृष्टिकुंड पैदा हुई है अंदर से? अच्छा, आत्मा ये देख रही है तो आत्मा में कौन सी बात है, कौन से ऐसे संस्कार है या आदत है जिस आधार से ये नुक्स देख रही है? ये है सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्वदर्शन। समझ में आई बात? दूसरी बात, आपने किसी को अप्रिशिएट किया, किसी का गुण देखा, नुक्स देखने वाली समझ गए, ठीक है। तो हम नुक्स में नहीं फंसेंगे, अभिमान बीच में नहीं आएगा। अभिमान क्या बोलता है? देखो मैं राइट हूं ना, ये रॉन्ग बिहेवियर है, ऐसे नहीं होना चाहिए। फंस गए आप। और इसका जो नुक्स है कि जो खामी है वो आप में आ गई, पर चिंतन करते करते करते, वर्णन करते करते, वो ही खामियां आपने अब्सॉर्ब कर लिया। फिर पॉजिटिविटी का देखते, ठीक है, किसी में कुछ गुण अप्रिशिएट करते हैं। स्वदर्शन माना किसने देखा है? ये आत्मा ने परखा है ना, ये गुण है। तो कौन से गुण है आत्मा में जो ये गुण को पिकअप किया? तो फिर बात क्या आती है कि स्वदर्शन का साइकिल कंप्लीट होता है तो सेल्फ अप्रिशिएशन भी आता है कि देख आत्मा, तुम्हारे में ये गुण है इसलिए तुमको ये दिखाई दिया। जब हम ये साइकिल पूरा कंप्लीट नहीं करते हैं ना, तो क्या हो जाता है? काम बीच में आ जाता है, किसी के नेचर नाम रूप में फंस जाते हैं, इंप्रेस हो जाते हैं, कितनी अच्छी गुण है, देखो तो सही, मैं ऐसी कैसी बन सकती हूं। गए काम के। समझ में आई बात? देखो गुण तो दिखाई देगा, अवगुण भी दिखाई देगा, राइट? दर्शन माना मेरी आंखें उसमें डूब गई, ज्यादातर वहां रह गई। पर दर्शन माना ज्यादातर मेरी आंखें कोई व्यक्ति या वस्तु में डूबी। जो रियलिटी है रियलिटी है, लेकिन चिंतन क्यों चले? वो नेचुरल है। अब देखो प्रकृति में एक उल्टा टेढ़ा झाड़ होगा, एक सीधा होगा, एक वो क्या कहते हैं जो हाँ वो हम तो इंग्लिश में कहते हैं क्रीपर, हाँ जो झाड़ के ऊपर उगता है, हाँ वेल, हाँ दैट्स करेक्ट, जो झाड़ के ऊपर होता है। लेकिन एक दोनों का कंप्लेंट निकालते हैं क्या कि तुम ऐसा टेढ़ा लंबा क्यों है, तुम मेरी ऊपर क्यों उग रहा है, जो नेचुरल है वो हो रहा है, सभी के लिए जगह है, तो मैं क्यों चिंतन उठाऊं। यज्ञ में कुछ भी हो रहा है, ये नेचुरल है, जो बाहर की दुनिया में हो रहा है, तमो प्रधान स्थिति पर सब कुछ पहुंच गया है, ये नेचुरल है। सत्तो रजो तमो नेचुरल प्रोसेस है। अभी जो चीज नेचुरल हो रही है, दिमाग लगाने की क्या आवश्यकता है? उस नेचुरलनेस में जो भी है, चाहे सत्युग की नेचुरलनेस, वो तो उस समय तो कुछ बानी नहीं होगा, हम कहां है, सब कुछ एक रस, एक लेवल पे है, एक फ्रीक्वेंसी पे है। लेकिन तमो प्रधान दुनिया भी नेचुरल है, मैं इसको बुरा नहीं मानती हूं। यू अंडरस्टैंड, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, तो मेरा जजमेंट भी नहीं उठता है क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, नहीं होना चाहिए, ये सारा अभिमान। टू हैव एन ओपिनियन अबाउट एनीथिंग, आजकल तो आप देखेंगे ना मनुष्य लोगों को, तो एक एक व्यक्ति के पास हर बात के ऊपर ओपिनियन है, ओपिनियन के ऊपर ओपिनियन की किताबें भी लिखी है। सत्य क्या है? तो रियलिटी में रहना हमारी रॉयल्टी है, क्योंकि उसमें क्या होता है, ये रियलिटी है। अच्छा, बाबा ने मुझे स्पष्ट बोला है, बच्ची इसका क्या सोचना है, परिस्थिति के ऊपर क्या सोचना है, स्व का दर्शन करो ना, जो बाबा की बातें हैं उसके ऊपर विचार करो ना, यही मेरे को केवल ड्यूटी मिली है बस, और बातों में जाने की कोई दरकार ही नहीं है, ना कि हमको बाबा से परमिशन मिली है। फिर भी 99% में कहूं ना, लोग आते हैं और बातों लेकर जाते हैं, पर चिंतन पर दर्शन करके करके दिमाग खराब करके कहानी बना करके फिर आते हैं, फिर कहते हैं ज्ञान दो ना। लेकिन इस एनवायरमेंट में ज्ञान काम नहीं करेगा जब तक मैंने वो साइकिल कंप्लीट नहीं की है। समझ में आई बात? इसलिए आप 10 क्लास सुनो दिन में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये काम हमारा है, प्यूरिटी की धारणा माना, ये साइकिल कंप्लीट होनी चाहिए। मैं खुद अपने आईने में देखूं, मेरी दृष्टिकोण क्यों ऐसी है, मेरी वृत्ति क्यों ऐसी बन रही है, मेरी फीलिंग्स क्यों, ये मेरी है रिएक्शन, किसी और वजह से नहीं है। जब तक अंदर से ये हिम्मत पैदा नहीं होती है ना खुद का सामना करने के लिए, हिम्मत चाहिए इसके लिए। बिठाओ, कान पकड़ो, क्यों बुद्धि इधर गई, क्यों दृष्टि बिगड़ी, ये छोटी छोटी बातों में मैं बोल रही हूं। यू अंडरस्टैंड, ये लाइफ बनानी है हमको, और लाइफ छोटी छोटी बातों में बनती है। तो प्यूरिटी की धारणा हर बात में, मुझे प्यूरिटी के लिए, अपनी प्यूरिटी के लिए प्यार, क्योंकि मेरी प्यूरिटी मेरी रॉयल्टी है, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है। आपने प्यूरिटी गंवाई, छोड़ दी प्यूरिटी, तो खिचड़ा ले लेंगे, मजबूरी आ जाएंगे। ये जो मजबूरी की फीलिंग होती है ना, जो हम इंग्लिश में कहते हैं सबसर्वियंस, लैक ऑफ प्यूरिटी, माना मैंने एक दफे पर, एक घड़ी में मैंने प्यूरिटी का हाथ छोड़ा, प्यूरिटी की धारणा छोड़ी, धर्म की सत्ता तब आती है जब अंदर से फुल सिस्टम में प्यूरिटी है हर बात की। हम जब सेवा में कई विचार लेके आते थे दादी के पास, ठीक है, कुछ होता था, हम निमित्त होते थे कई, तो हम जब दादी को हमारे विचार बताते ना, दादी हमको कहती थी ऐसे सोचो, ऐसे नहीं सोचो। तो आपको अपनी सोच की फिल्टर करना पड़ेगा कि ये सोच मुझे कहां लेके जा रही है, ये ठीक है क्या, इस सोच से मेरा फायदा होगा। एक बारी क्या हुआ, मैं आपको बता, एक प्रोग्राम हुआ था ऑक्सफोर्ड में, तो दादी को स्टेज पे बिठाया था एक बड़े वीआईपी के साथ, और जो इंटरव्यू करने वाला था वो एक बीके भाई था। तो इंटरव्यू से पहले उसने दादी को बोला, दादी ये अभी ऐसा ऑडियंस है, आप भगवान की ज्यादा बातें नहीं करना, अभी ये कैसे कर, अभी दादी तो दादी है, जैसे बैठती है योग कनेक्शन जुड़ता है तो जो बाबा को कराना है वो कराता है। तो शुरू से लेकर के भगवान की बातें शुरू कर ली, तो वो थोड़ा इंटरव्यूअर नाराज हो गया। तो इंटरव्यू के बीच में उसने अपने क्वेश्चंस नीचे छोड़ दिए टेबल पे, और जो आपस में दूसरा गेस्ट था वो फिर दादी के साथ चिट-चिट शुरू किया। लास्ट में बीके भाई जब सब कुछ पूरा होकर के दादी के पास आया, दादी मैंने आपको बोला था ना कि बाबा के, भगवान के बारे में नहीं बोला, तो आपने क्यों मेरे कोई भी प्रश्नों का सही जवाब नहीं दिया आपने, तो मेरे लिए तो इंटरव्यू बिल्कुल खराब हो गया। दादी कहते, अरे भाई देखो तो सही, लास्ट में इतने सभी लोगों को प्राप्ति हुई, फायदा हुआ, इतनी प्राप्ति लेकर के गए, अभी आप ऐसे सोचेंगे, अभी आपका सोच, आप अभी आप सोच में हार जाएंगे तो उनका क्या होगा, थोड़ा सा भी प्राप्ति जो लिया है वो भी छोड़ देंगे क्योंकि आपने छोड़ दी प्राप्ति, नहीं लिया, आधा तक लिया छोड़ दिया। हम समझते हैं, हम जब सोच ढीला रखते हैं ना, उसका नतीजा नहीं पता होता है हमको, पूर्वज आत्माएं बैठी है, आपने अपने सोच की धारा, विचारधारा ढीली कर दी, तो आपके पीछे बहुत लोग ही ऐसे आपको कॉपी करके करेंगे, और भोगना किसको है, आपको ही भोगना पड़ेगा। एक पूर्वज ब्राह्मण बनना एक बहुत ऊंची अवस्था है, इसलिए कैसे भी करके चढ़ती कला, बुद्धि को आगे बढ़ाओ, ऊपर बढ़ाओ बाबा की तरफ, नीचे नहीं गिरना है, लूस नहीं करना है। समझ में आई बात, हम तो सोचते हैं हम, मुझे कौन देखता है, लेकिन सूक्ष्म में कनेक्शन बहुत है, अभी भी 10 लोग हैं जो आपको याद कर रहे हैं, अभी आपकी जो अभी की अवस्था है, दुखी है तो उसको दुख पहुंचेगा, सुखी है तो उसको सुख पहुंचेगा, ढीले हो गए तो वो भी ढीले हो जाएंगे। हमारे आपस के बीच में एक इनविजिबल रस्सी बांधी हुई है, हमको पता नहीं है, हमारे अभिमान के वश हमको ये दिखाई नहीं देता है। इसीलिए धर्म की सत्ता माना एक रूलिंग अथॉरिटी होती है हाथ में, मैं जो कर्म करूंगी या करूंगा मेरे पीछे 10 लोग हैं वो ही कर्म करते, और वो कर्म का नतीजा भी मेरा भी मुझे भोगना पड़ेगा, उनका भी मुझे भोगना पड़ेगा, क्योंकि वो मेरे कनेक्शन में है। प्यूरिटी की धारणा माना 21 पीढ़ी को आप उठा सकते हो। धारणा। और पता है जिसके पास धर्म की सत्ता होती है ना, प्यूरिटी की धारणा, उनके पास परिवर्तन की शक्ति होती है। परिवर्तन कर सकते हैं। दूसरी शक्ति होती है दृढ़ता की, हर बात में वो फर्म रह सकते हैं अपने नियमों में, कुछ कारण के लिए वो नियम नहीं छोड़ेंगे। देखो दादी जी इतने सालों से विदेश में रही है, फिर भी दादी का पर्सनल कार कोई भी नहीं था, दादी की खुद की पर्सनल गाड़ी विदेश में बिल्कुल थी नहीं। क्यों? इतने सारे बाबा के बच्चे सेवा के लिए कंपनी देने के लिए आएंगे, वो अपनी गाड़ी लेके आएंगे, पर्सनल गाड़ी क्यों रखो, एक्स्ट्रा खर्चा क्यों करो। और दादी का नियम क्या था? कम खर्च बालानशीन। और ये देखो वंडर की ये बात है, दादी ने बहुत समय पहले कि मेरे अंतिम संस्कार पे भी कुछ खर्च नहीं होना चाहिए, ऐसी जिंदगी दादी ने बिताई है, वो नियम प्रमाण चली है। लास्ट में ड्रामा ने भी दादी के लिए नियम पालन करके दादी की इच्छा पूरी की। नियम का एक बल रहता है, आप नियम के अनुसार नहीं चलेंगे ना, ढीले बिले, कभी कुछ और कभी कुछ और, कभी ऊंचा कभी नीचा, अंदर की शक्ति नहीं बन रही है, अंदर का नशा नहीं बन रहा है। नियम पे चलने वाले प्रकृति का बल भी मिलता है। नियम नहीं छोड़ना है। दादी बहुत 94 की उम्र तक संगठित योग कराती थी, सवेरे अमृत वेले। संगठन में आना है, पढ़ाई का नियम संगठन में, योग का नियम संगठन में। ऐसे नहीं कि दादी अपने कमरे में बैठ जाए, बस मैं थोड़ा बीमार हूं मैं कमरे में बैठ जाती हूं, नहीं। तो अभी आप अपने आप को पूछो, आप सभी भट्टी के लिए आए हो, माना क्या अंदर की सिस्टम को रीइन्वेंट करने के लिए आए हो? अभी आईना लगाओ, आज दिन तक कौन से नियम पे चली हूं और इस दिन के बाद मुझे कौन से नियम पे चलना ही है, कुछ भी हो जाए। और देखो आप जब कोई भी नियम बना करके चलेंगे ना, तो गाड़ी ऑटोमेटिकली चलती है। हाँ, ऑटोमेटिक आपकी लाइफ जैसे ऑटोमेटिक बन जाती है, ज्यादातर सोचना नहीं पड़ता है। दादी ने निर्संकल्प अवस्था इस कारण से प्राप्त की है, हर बात में नियम, स्टेडीनेस, कंसिस्टेंसी, इसमें अपनी खुद की एनर्जी जमा होती है। दादी तो अपनी एनर्जी भी नहीं यूज करती थी, वो तो जमा किया और जब कुछ कर्म का हिसाब किताब चुकतू होना था तब वो सेविंग्स अकाउंट से निकालती थी, लेकिन ज्यादातर तो दादी बाबा को यूज करती थी। बाबा, बस बाबा की याद में कनेक्शन, फिर जो मिलता था ऐसी गाड़ी चलती थी। ये रियलिटी है, हम अपने स्वभाव संस्कार के जेल में बैठे हैं, ठीक है, या एक स्वभाव संस्कार का एक वस्त्र है, फिर वो चलता रहता है, चलाता है मन बुद्धि को, ये सोचे ये करे, वो होना चाहिए ये होना चाहिए वो होना चाहिए, और हम अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं। बाबा इसको कहेंगे मियां मिट्ठू। कर्मातीत अवस्था एक निर्संकल्प अवस्था है, ये एक बैलेंस्ड अवस्था है। प्यूरिटी की धारणा हर बात में हमको न्यूट्रल रखती है, चाहे निंदा स्तुति हार जीत, हर बात में प्यूरिटी हमको न्यूट्रल रखती है। मिले तो अच्छा, ना मिले तो भी अच्छा, हर बात में कल्याण है। समझ में आई बात? अभी अंदर ऐसा सिस्टम बनाओ, प्यूरिटी की एक सिस्टम बना दो, संकल्प के फिल्ट्रेशन, बुद्धि को डायरेक्शन दो, बुद्धि को सेट करो सिस्टम में कि बुद्धि इधर उधर ना भटके, बोल का नियम बना दो सिस्टम, फिर देखो कैसे इजी रूप से गाड़ी चलती है। योग भी इतना इजी, जैसे आप बैठेंगे ना योग लगता है तुरंत, क्योंकि सिस्टम साफ है ना, अपने नियम पे चले हैं, कुछ किचड़ा बीच में नहीं आया, तो सफाई से, साफ दिल से, सच्चे दिल से, मुराद हासिल। तो एक शक्ति परिवर्तन की शक्ति, दूसरी शक्ति है ये दृढ़ता की शक्ति, नियम में पक्के, तीसरी शक्ति है नम्रता। जो प्यूरिटी की धारणा वाले होते हैं ना, उनका स्वभाव बहुत कूल नेचर, सरलता, कूलनेस। ये जैसे एक वृक्ष होती है ना, जब जिसके नीचे बैठेंगे छाया मिलती है, तो प्यूरिटी की धारणा वाली, स्वभाव वाली आत्मा आप बैठेंगे ना उसके साथ, ऐसे बहुत कूलनेस महसूस होगी, शीतलता महसूस होगी, एक छत्र छाया महसूस होगी, और ये बहुत काम करता है। तो नम्रता माना क्या? नम्रता माना क्या? व्हाट इज ह्यूमिलिटी? ग्राउंडेडनेस माना मेरे स्वमान में मैं टिकी हुई हूं, मैं स्वमान में बैठी हूं तो कितनी संतुष्ट हूं। कुछ चाहिए आपको? जब स्वमान की सीट पे बैठे हो तो कुछ चाहिए आपको? मानशान चाहिए आपको? नहीं चाहिए ना। क्या मैं मेरा चलता है? क्या मैं जो बोलू वही करना है, वो चलता है क्या? स्वमान की सीट में जैसे बैठे हैं तो नम्रता का गुण, प्यूरिटी की सीट, प्यूरिटी बहुत सॉफ्ट एनर्जी है, उस सीट में बैठे तो रोब कहां से आएगा? इसलिए अपने आप को सॉफ्ट बना दो हर बात में। प्यूरिटी माना नम्र चित्त, सरल स्वभाव वाली आत्मा। तब जाकर के विश्व कल्याणकारी बन सकेंगे और विश्व का निर्माण भी होगा, विश्व परिवर्तन भी होगा। ठीक है? क्लियर? धारणा की मूर्ति और फिर धर्म की अथॉरिटी। कहते हैं ना, अथॉरिटी ऑफ रिलीजन, फाउंडेशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ रिलीजन है अथॉरिटी ऑफ धारणा, और वो भी हमारे लिए धारणा ऑफ प्यूरिटी। तो प्रतिज्ञा किस बात में करनी है? प्यूरिटी में। ओके, ओम शांति।
यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं।
प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं।
सच्चे दिल पर साहब राजी, हर श्रीमत पर कहे हाँ जी, एक बाबा तू जान कोई वादे के पक्के पक्के हैं।
प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं।
प्रभु प्यार निरंतर है, सांच को कोई आंच नहीं, खुशियों में नाचते रहते हैं।
प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं।
सच्चा साफ रहे निर्मल निश्चल जीवन वाले प्रभु को लगते अच्छे हैं।